सातवां इंगित सिद्धांत, इसे अंग्रेजी में गेस्टर थ्योरी कहा जाता है। इसके प्रवर्तक आइसलैंड की भाषाओं के विद्वान अलेक्जेंडर हैं। आपने आइसलैंड की भाषा के लगभग 20,000 शब्दों की व्युत्पत्ति करते हुए बारोपीय मूल भाषा नामक ग्रंथ लिखा है। उन शब्दों का सम्यक अनुशीलन करते हुए आपने यह निष्कर्ष निकाला है कि अधिकांश ध्वनियों में धातुओं में ध्वनि या क्रिया तथा अर्थ का सामंजस्य रहता है। इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य ने अपने आंगिक चेष्टाओं का वाणी द्वारा अनुकरण किया और इसी से भाषा की उत्पत्ति हो गई। जैसे शरबत पीते समय मनुष्य के होठों एवं जीभ से सड़प सड़प या सरप सरप या सरब सरब जैसी ध्वनि होती है और इसी ध्वनि के अनुकरण पर अधिकांश भाषाओं में शरबत शब्द बन गया है। इसी आधार पर अलेक्जेंडर जॉनसन ने निष्कर्ष भी निकाला है कि ओष्ठ वर्णों से जितनी धातुएं निकली हैं उनका अर्थ बोलना, ग्रहण करना, दबाना या बाहर निकालना होता है, क्योंकि ओष्ठ ऐसे ही इंगित करते हैं। इसी तरह दंत ध्वनियों से निर्मित धातुओं का अर्थ स्पर्श, ग्रहण, नाश, फैलना आदि होता है, क्योंकि इनसे ऐसे ही इंगित प्रतीत होते हैं। अतः संपूर्ण भाषा की उत्पत्ति इन्हीं इंगितों के आधार पर हुई है। समीक्षा। उक्त सिद्धांत में भी निम्नलिखित दोष विद्यमान है और कुछ सामान्य क्रियाएं अवश्य इंगितों से निर्मित हुई हैं, किंतु भाषाओं के अन्य सभी क्रियाओं पर यह नियम लागू नहीं होता। आ, दूसरों के क्रियाओं या चेष्टाओं के अनुकरण की बात तो समझ में भी आती है, किंतु अपनी ही क्रिया या अपने इंगितों के अनुकरण की बात असंगत एवं असमीचीन जान पड़ती है। ई, व्यंजक इंगित और भाषा ध्वनियों में कभी अनुरूपता नहीं होती। कोई व्यंजक इंगित तभी भाषा का रूप ग्रहण करता है जब वह अपने स्वाभाविक प्रवाह के कारण उस इंगित का प्रतीक बनकर खूब विकसित नहीं हो जाता। ई, यदि इंगितों से भाषा की उत्पत्ति होती है तो पशुओं एवं पक्षियों में अभी तक भाषा क्यों नहीं विकसित हुई? वे तो इंगितों से ही आज तक अपना काम चलाते। उ, बच्चे भी इंगितों से अपना मनोभाव व्यक्त करते हैं, किंतु बच्चों के उन इंगितों से भी तो भाषा नहीं, जबकि बच्चों को भी भाषा अलग से सीखनी पड़ती है। अतः उक्त दोषों के कारण इंगित सिद्धांत में मान्य नहीं है। इतना अवश्य है कि भाषा में कुछ शब्द अवश्य इंगित सिद्धांत पर बने हैं, परंतु सारी भाषा को इससे उत्पन्न मानना प्रयुक्त नहीं है। आठवां, प्रतिक्रिया ध्वनि सिद्धांत। कुछ विद्वानों का मत है कि प्रायः पशु पक्षी जिस तरह आत्मा रक्षा, मैथुन भय, आहार प्राप्ति, संतान रक्षा आदि के लिए अपनी प्रतिक्रियात्मक ध्वनि व्यक्त किया करते हैं, उसी प्रकार मनुष्य के मुख से भी उक्त परिस्थितियों में पहले निरर्थक ध्वनि निकलती रहती थी, किंतु वही पीछे सार्थक ध्वनि संकेत बनकर भाषा बन गई। प्रायः यह देखा जाता है कि बिल्ली के आ जाने पर चिड़िया एक विशिष्ट ध्वनि के साथ चहचहाने लगती है, जिसको सुनकर अन्य चिड़ियाँ भी यह समझ जाती हैं कि कोई खतरा है और वे आत्मरक्षा के लिए सजग एवं सावधान हो जाती हैं। ऐसे ही मैथुन के समय कुछ पशुओं के विचित्र ध्वनि सुनने को आती है और पक्षी भी एक विशिष्ट ध्वनि क्रिया करते हैं। इसी प्रकार कुत्ते को देखकर एक कुत्ता जब गली में भौंकता है तब उसकी उस विशिष्ट ध्वनि को सुनकर गली के समस्त कुत्तों में प्रतिक्रिया होती है और वे भी सजग हो जाते हैं तथा भौंकने लगते हैं। ऐसे ही आरंभ में मानव के मुख से भी विभिन्न परिस्थितियों की प्रतिक्रिया स्वरूप कुछ निरर्थक एवं अनर्गल ध्वनियाँ निकली होंगी, जो भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न होती हुई किसी एक परिस्थिति के लिए कोई एक सार्थक ध्वनि बन गई होगी। फिर धीरे धीरे उन्हीं ध्वनियों से भाषा की उत्पत्ति हो गई। जैसा कि ब्लूमफील्ड ने लिखा भी है कि किसी परिस्थिति की प्रतिक्रिया में जो ध्वनि उत्पन्न करते हैं इसी से भाषा की उत्पत्ति हुई है। समीक्षा। इस सिद्धांत में सबसे बड़ा दोष तो यह है कि जब पशु पक्षी किसी परिस्थिति की प्रतिक्रिया रूप में आसक्त ध्वनि करते चले आ रहे हैं तब फिर उनके अंदर अभी तक किसी भाषा का निर्माण क्यों नहीं हुआ? क्या मानव में पशु पक्षियों से भिन्न कोई ऐसी बात नहीं है जिससे वह भाषा का निर्माण करने में समर्थ हुआ है? निश्चय ही मानव के पास पशु पक्षियों से भिन्न मस्तिष्क एवं बुद्धि है और वह अपनी शारीरिक गठन के कारण भी पशु पक्षियों से भिन्न है। इसलिए इस सिद्धांत में केवल इतना ही सार दिखाई देता है कि आरंभिक स्थिति में मानव ने भी परिस्थिति की प्रतिक्रिया के रूप में ही मुख से कोई निरर्थक ध्वनि निकाली होगी, जो जैसे जैसे सार्थक होती गई वैसे वैसे उससे मानवीय भाषाओं की उत्पत्ति होती चली गई। इस दृष्टि से इस मत में सत्यांश विद्यमान है। 9वां विकास सिद्धांत। कुछ विद्वानों ने भाषा की उत्पत्ति संबंधी भिन्न भिन्न सिद्धांतों में कुछ न कुछ कमी देखकर सभी सिद्धांतों का समन्वय करके विकास सिद्धांत का समर्थन किया है। पाश्चात्य विद्वानों में से स्वीट का मत है कि भाषा की उत्पत्ति किसी एक सिद्धांत के आधार पर नहीं हुई है, अपितु भाषा के ध्वनि समूहों का क्रमिक विकास हुआ है। यह कहना ठीक नहीं है कि पहले अनुकरण वाले शब्द बने या पहले मनोभावों को व्यक्त करने वाले शब्द बने, अपितु यह सत्य है कि सभी प्रकार के ध्वनि समूहों का विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न रूप में विकास हुआ है। स्वीट के मत से आरंभिक भाषा के शब्द तीन प्रकार के थे, अ अनुकरणात्मक, आ मनोभावबोधक और ई प्रतीकात्मक। जैसे भों भों, पों पों, चिल्लाना, चहचहाना, किलकारी मारना, किचकिचाना या काक, काग, कोकिल आदि शब्द प्रथम अनुकरणात्मक वर्ण में आते हैं। हाय हाय, वाह वाह, ओहो हो आदि शब्द तृतीय मनोभावबोधक वर्ग में आते हैं और तृतीय वर्ग में भी प्रतीकात्मक शब्द आते हैं, जो विभिन्न क्रियाओं, संबंधियों, माता पिता, मामा आदि कुटुंबी जनों, यह वह आदि सर्वनामों आदि के प्रतीक बने हैं। स्वीट ने इस तृतीय वर्ग को अत्यंत विस्तृत माना है और प्रथम तथा द्वितीय वर्ग से शेष जितने भी शब्द भाषा में प्रयुक्त होते हैं उनको इसी तृतीय वर्ग में रखा है। इसका कथन है कि ये प्रतीकात्मक शब्द बड़े रोचक एवं आकर्षक होते हैं। जैसे बच्चे जब अकारण माता या पिता को देखकर माँ माँ या पा पा व्यक्त करने लगते हैं, तब माता और पिता उन मामा या माँ तथा पापा ध्वनि को अपने लिए प्रयुक्त समझ लेते हैं। अंत में भी निरर्थक ध्वनियाँ सार्थक बनकर भाषा का रूप ग्रहण कर लेती हैं। ऐसे ही समीपस्थ व्यक्ति के लिए यदि मानव अ अ का ध्वनि संकेत करता होगा जिससे यह सर्वनाम बन गया, दूरस्थ व्यक्ति के लिए ओ ओ का ध्वनि संकेत करता होगा जिससे वो या वह ध्वनि दूरस्थ व्यक्ति का प्रतीक बन गई। ऐसे ही पानी पीने में आदि मानव भीतर की ओर सांस खींचकर प और ब के समान कुछ ध्वनि संकेत करता होगा, इस कारण ओष्ठ वर्ण पीना, पीबती, विवेरे, लैटिन जैसी क्रियाओं के प्रतीक बन गए। डॉक्टर श्याम सुंदर दास का मत है कि उक्त तीन वर्णों के अतिरिक्त भी कुछ ऐसे शब्द भाषाओं में मिलते हैं जिनकी उत्पत्ति न तो अनुकरणात्मक ध्वनि से हुई है और न भावबोधक ध्वनियों से हुई है और न जो प्रतीकात्मक रूप में ही उत्पन्न हुए हैं, अपितु इनका एक अलग ही रूप मिलता है, इन्हें औपचारिक शब्द कहा गया है। उपचार का साधारण अर्थ यह है कि ज्ञात के द्वारा अज्ञात की व्याख्या करना, अर्थात किसी ध्वनि संकेत से व्यक्त मुख्य पदार्थ के अतिरिक्त उसी ध्वनि के संकेत से किसी दूसरे सदृश या संबद्ध पदार्थ का बोध कराना। जैसे ऑस्ट्रेलिया के आदिवासियों ने सर्वप्रथम जब पुस्तक को देखा तो वे आपस में मुयूस कहने लगे, क्योंकि मुयूम उनकी भाषा में स्नायु को कहते हैं और पुस्तक भी स्नायु की भांति खुलती और बंद होती थी। ऐसे ही अंग्रेजी का पाइप शब्द है, यह पहले गडरियों के बाजे या वंशी के लिए प्रयुक्त होता था, आगे चलकर वंशी की तरह जितनी भी पोली और खोखलाकार वस्तुएं दिखाई दी वे सब पाइप कहलाने लगे। आज नलकी पाइप है और नाली के लिए प्रयुक्त गोल लोहे का पोला पदार्थ भी पाइप कहलाता है। ऐसी भांति अन्य औपचारिक शब्दों का भी विकास हुआ है। इस प्रकार भाषा की उत्पत्ति संबंधी सभी विद्वानों सभी सिद्धांतों के आधार पर यही सिद्ध होता है कि भाषा का क्रमिक विकास हुआ है। जैसी परिस्थितियां मानव के सम्मुख आई हैं उनके सम्मुख अनुसार ही भाषा विकसित होती चली गई। आरंभ में मानव भले ही पशु पक्षियों की तरह संकेतों एवं ध्वनियों में काम चलाता होगा, उस समय ये संकेत या ध्वनियां निरर्थक रही होंगी, परंतु जैसे जैसे समय बीतता गया और हर बार किसी विशिष्ट परिस्थिति में विशिष्ट ध्वनि या विशिष्ट संकेत किए जाते रहे। वे संकेत उस परिस्थिति के प्रतीक बनते चले गए और उनको ही ध्वनि संकेतों के रूप में सार्थक मानकर भाषा का रूप दिया जाने लगा। इस तरह भाषा विकसित हुई है। वह एक दिन में नहीं बनी और न चार छह व्यक्तियों ने मिलकर इनका निर्माण किया है। यह एक सामाजिक संपत्ति है और मानव ने अपनी परिस्थिति, परिवेश एवं उनकी आवश्यकताओं के अनुसार ध्वनि संकेतों को जन्म देकर भाषा का निर्माण किया है। अपनी इच्छा, अपने विचार एवं अपने मनोभावों को व्यक्त करने के लिए मानव को जैसे जैसे आवश्यकता होती गई है, वैसे वैसे वह ध्वनि संकेतों का प्रयोग करता चला गया है और वे ध्वनि संकेत ही विकसित होकर एवं सार्थक बनकर भाषा के निर्माण में सहायक होते चले गए। अतः भाषा मानव की परिस्थिति, उसके जीवन की आवश्यकता एवं उसकी विशिष्ट शारीरिक संरचना के कारण विकसित हुई है और भाषा का यह विकास धीरे धीरे हुआ है। भाषा की प्रकृति। भाषा के सहज स्वभाव एवं नैसर्गिक गुण को भाषा की प्रकृति कहते हैं। भाषा का गहन संबंध समाज से है। वह समाज में रहकर ही मानव को प्राप्त होती है। वह किसी भी पैतृक संपत्ति नहीं है। उसे मानव अनुकरण से प्राप्त करता है एवं अर्जित करता है। भाषा सदैव परिवर्तित होती रहती है और किसी के बंधन में विकसित नहीं होती, अपितु उसका प्रवाह नैसर्गिक एवं प्राकृतिक होता है और वह परंपरागत भी होती है। इस प्रकार भाषा के विविध रूपा प्रकृति को सुगमता की दृष्टि से निम्न भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला, भाषा सामाजिक संपत्ति है। दूसरा, भाषा परंपरागत वस्तु है। तीसरा, भाषा अर्जित संपत्ति है। चौथा, भाषा परिवर्तनशील होती है। पांचवा, भाषा का प्रवाह अविच्छिन्न एवं नैसर्गिक होता है। छठा, भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। सातवां, भाषा मानव जीवन से पोषित होती है। आठवां, भाषा भाव प्रेषणीयता का सर्वश्रेष्ठ साधन है। नौवां, भाषा किसी की पैतृक संपत्ति नहीं अपितु सार्वजनिक संपत्ति है। दसवां, भाषा जटिलता से सरलता की ओर उन्मुख होती है। पहला, सामाजिक संपत्ति। भाषा का गहन संबंध समाज से है। कोई भी भाषा उस भाषाभाषी समाज में ही जाकर भली प्रकार सीखी जाती है, क्योंकि कोई भी बालक किसी भाषा को सीख कर जन्म नहीं लेता, अपितु जन्म लेने के उपरांत जिस भाषाभाषी समाज में उसका पालन पोषण होता है वह उसी भाषा को सहज रूप में सीख लेता है। कभी कभी यह देखा गया है कि यदि किसी बालक को कोई भेड़िया जंगल में उठा ले जाता है और वह भेड़िया ही उसे अपनी माद में पालता है तो उस बच्चे को भेड़िए की ही बोली आती है और वह किसी भी मानव समाज की बोली या भाषा को सीख नहीं पाता। हाँ, जब वह किसी समाज में रहकर पुनः भाषा सीखने के लिए प्रयत्न करता है तब अपने नैसर्गिक वाग्यंत्र के कारण उस समाज की भाषा सीख सकता है। इसी तरह यदि एक बच्चा भारत के किसी स्थान पर जन्म लेते ही रूस भेज दिया जाए तो वह भारतीय भाषा न सीख कर रूसी भाषा सहज रूप में बोलने एवं समझने लगता है, और यदि किसी अंग्रेज बालक को लंदन में जन्म लेते ही ब्रज में रहने दिया जाए तो वह ब्रज की भाषा सहज रूप में सीख लेता है। इतना ही नहीं, जो बालक जिस समाज के वर्ग में पलता एवं रहता है उसी सामाजिक वर्ग की भाषा को सहज रूप में सीख लेता है। जैसे दिल्ली में जन्म लेकर यदि किसी सिंधी बालक का पालन पोषण बंगाली समाज में होता है और बंगाली लोग नित्य प्रति बंगला में अपने विचार व्यक्त करते हैं तो बालक सिंधी माता पिता का होने पर भी बंगला भाषा सहज रूप में सीख लेता है, जबकि सिंधी कदापि नहीं बोल सकता। इस प्रकार माँ बाप का पालन पोषण करने वाले व्यक्तियों के समाज की भाषा को बच्चे सहज ही बोलने लगते हैं और अन्य भाषाओं को नहीं बोल पाते। एक अंग्रेज दंपत्ति का बच्चा इसी कारण सहज ही वाटर, ब्रेड, गुड मॉर्निंग आदि बोलने लगता है और हिंदी प्रदेश का बच्चा सहज ही पानी, रोटी, नमस्ते आदि कहने लगता है। ऐसे ही ग्रामीण समाज में पालन पोषण होने पर एक बालक को ग्रामीण बोली सहज में आ जाती है और नगर के सभ्य समाज में पालित पोषित बच्चे को नगर की सभ्य भाषा भली प्रकार आ जाती है। इससे सिद्ध है कि भाषा सामाजिक संपत्ति है। दूसरा, परंपरागत वस्तु। भाषा एक परंपरागत वस्तु है। क्योंकि प्रत्येक समाज में एक दीर्घ परंपरा से भाषा का प्रचार एवं प्रसार देखा जाता है। उदाहरण के लिए ब्रज प्रदेश में जाकर देखें तो पता चलेगा कि वहाँ सैकड़ों वर्षों से ब्रज निवासी ब्रज भाषा बोलते चले आ रहे हैं और उनकी संतानें भी उसी ब्रज भाषा का प्रयोग एक दीर्घ अवधि से करती चली आ रही। ऐसे ही अवधि प्रदेश में जाकर देखें तो ज्ञात होगा कि वहाँ जनता एक लंबे समय से दिन रात अवधि का प्रयोग करती चली आ रही है और उनके संतानें भी सुगमता एवं सरलता से अवधि बोलती चली आ रही हैं। यही बात भोजपुरी प्रदेश, बांगुरू प्रदेश, कन्नौज प्रदेश, बघेली प्रदेश, बुंदेली प्रदेश आदि में पाई जाती है। इतना ही नहीं, पंजाब प्रदेश में जाकर देखें तो वहाँ प्रत्येक जाति के व्यक्ति पंजाबी भाषा में इस प्रकार सहज बातें करते मिलेंगे मानो वे जन्म से ही पंजाबी सीखे हुए हों। ऐसे ही बांग्ला प्रदेश में प्रत्येक व्यक्ति बंगला भाषा में बातें करते हुए मिलेगा और वह भाषा एक दीर्घ परंपरा से वहाँ प्रचलित मिलेगी। यही बात समृद्ध एवं समुन्नत भाषाओं के लिए भी लागू होती है, क्योंकि समृद्ध भाषाएं भी उत्तरोत्तर विकास को वहीं प्राप्त हुआ करती हैं जहाँ वे एक दीर्घ अवधि में काम में आती रहती हैं और उनकी एक लंबी परंपरा वहाँ स्थापित हो जाती है। जैसे चीनी भाषा की अत्यंत सुदीर्घ परंपरा है और उसी परंपरा के कारण समूचे चीन में वह प्रचलित है। ऐसे ही जर्मन, फ्रेंच, लैटिन, अंग्रेजी, रूसी आदि, हिंदी आदि भाषाएं हैं जिनकी एक लंबी परंपरा विद्यमान है और इनको समृद्ध एवं संपन्न बनाने में किसी एक पीढ़ी का हाथ नहीं रहा है, वरन कितनी ही पीढ़ियों ने इन्हें लगातार सुसंस्कृत एवं परिमार्जित बनाया है तथा इनका व्यवहार परंपरा से ही इनके बोलने वालों को उपलब्ध हुआ है। अतः सिद्ध है कि भाषा परंपरागत वस्तु है। तीसरा, अर्जित संपत्ति। जहाँ भाषा हमें परंपरा से प्राप्त होती है वहाँ हम भाषा का अर्जन भी करते हैं, क्योंकि जब एक भाषा भाषी प्रदेश में कोई अन्य भाषा भाषी व्यक्ति भी आकर रहने लग जाता है तब वह उस प्रदेश की भाषा को रात दिन प्रयत्न करके सीख लेता है और उस प्रदेश के निवासी भी रुचि होने पर उसकी भाषा को सीख लेते हैं। यही भाषा का अर्जन करना है। जैसे यदि कोई बंगाली महाशय अपने परिवार सहित आगरा नगर में एक हिंदी भाषी परिवार के समीप रहने लगते हैं और वे पहले तनिक भी हिंदी नहीं जानते, किंतु आगरा शहर में बंगला समझने वाले कम हैं और अधिकतर लोग हिंदी ही बोलते हैं, तो वे नित्य प्रयास करके काम चलाओ हिंदी सीख लेते हैं और आगरा निवासियों की बातें समझने एवं अपनी बात उन्हें समझाने में समर्थ हो जाते हैं। ऐसे ही उन बंगाली महाशय के पड़ोसी परिवार के हिंदी भाषा भाषी व्यक्ति भी उनसे नित्य प्रति बंगला भाषा के शब्द सीख कर थोड़ी बहुत बंगला भाषा सीख जाते हैं और उनसे कभी कभी बंगला भाषा में बातचीत कर लेते हैं। इस प्रकार दोनों परिवार अपनी अपनी परंपरागत भाषा के अतिरिक्त दूसरी भाषाएं भी प्रयत्न से सीख जाते हैं। इसी को भाषा का अर्जन करना कहते हैं। भारत में पहले जब मुसलमान आकर बस गए तो भारतीयों ने उनकी फारसी भाषा भली प्रकार सीख ली थी और जब अंग्रेज आकर यहाँ सत्ताधारी बन गए तब उनकी अंग्रेजी भाषा भी अच्छी तरह सीख ली। इस प्रकार अपनी मातृभाषा के अतिरिक्त अन्य भाषाओं का भी ज्ञान प्राप्त करके उनके बोलने, समझने और पढ़ने लिखने में क्षमता प्राप्त कर लेना ही भाषा का अर्जन कार्य कहलाता है। यह बात संपूर्ण विश्व में देखी जाती है कि एक भाषा भली भाषा भाषा प्रयत्न करके दूसरी भाषाएं भी सीख सकता है, इसलिए भाषा को एक अर्जित संपत्ति भी माना जाता है। चौथा, परिवर्तनशीलता। भाषा में सतत विकास होता रहता है, वह 100 वर्ष पहले जैसी थी वैसे आज नहीं रहती, अपितु उसमें कहीं कहीं तो पर्याप्त परिवर्तन हो जाता है। उदाहरण के लिए भारत के प्राचीन वैदिक संस्कृत को ही लीजिए, उसका जो स्वरूप ऋग्वेद मिलता है वह आगे चलकर ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यकों, उपनिषदों आदि में नहीं रहा। फिर रामायण महाभारत में आकर तो वह संस्कृत बिल्कुल ही परिवर्तित हो गई। ऐसे ही प्राकृत एवं वंश भाषाओं की दशा रही है, वे भी सतत परिवर्तित होती हुई लोक भाषा के रूप का परित्याग करके साहित्यिक भाषा बनी और फिर लुप्त हो गई। इसी परिवर्तन को खड़ी बोली ने भली प्रकार देखा जा सकता है। पहले एकमात्र ग्रामीण बोली ही थी और आज भी ग्रामीण बोली के रूप में मेरठ, मुजफ्फरनगर जिले के ग्रामों में प्रचलित है, किंतु परिवर्तित होते होते पहले अमीर खुसरो की कविता भाषा, एक नारी दो को ले बैठी टेढ़ी होकर बिल में बैठी के रूप में व्यवहृत होने लगी, फिर नामदेव की कविता में पांडे तुम्हारी गायत्री लोधे का खेत खाती थी के रूप में प्रयुक्त हुई। तत्पश्चात अब्दुल रहीम खान खाना की कविता में कलित ललित माला का जवाहरी जड़ा था, चपल चखन वाला चांदनी में खड़ा था के रूप में व्यवहारित हुई। इसके उपरांत गंग भट्ट ने गद्य में इसका प्रयोग किया, जैसे सिद्धि श्री 108 श्री श्री पात साहिब जी श्री दलपति जी अकबर साहिब जी आम खास में तखत के ऊपर विराजमान हो रहे हैं और आम खास भरने लगा है। फिर लल्लू लाल सदल मिश्र मुंशी सदाशुक लाल एवं इंशाअल्लाह खां के प्रयत्न से परिवर्तित होती हुई भारतेंदु युग में आकर यहाँ कहाँ हो हे हमारे राम प्यारे के रूप में पद के अंतर्गत तथा बखेड़िए और इतने बड़े कारनामे पर बेहयाई परले सिरे की नाम बिके लोग झूठा कहें अपने मारे फिरे पर वारे शुद्ध बेहयाई पूरी निर्लज्जता के रूप में गद्य में व्यवहारित होने लगी। तत्पश्चात पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रयत्न से खड़ी बोली का और परिमार्जन हुआ और वह चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में के रूप में पद्य में प्रयुक्त होने लगी और आह जीवन की क्षणभंगुरता देख भी मानो जीतनी गहरी नींव देना चाहता है। आकाश के नीले पत्र पर उज्ज्वल अक्षरों से लिखे अदृष्ट के लेख जब धीरे धीरे लुप्त होने लगते हैं तभी तो मनुष्य प्रभात समझने लगता है और जीवन संग्राम में प्रवृत्त होकर अनेक अकांड तांडव करता है के रूप में गद्य के अंतर्गत व्यवहारित होने लगती है। यही खड़ी बोली की चरमावस्था है। इसे स्पष्ट पता चल जाता है कि ग्रामीण समुदाय में बोली जाने वाली अरे भैये कागा जैसी खड़ी बोली धीरे धीरे परिवर्तित होती हुई किस प्रकार शुद्ध पर निष्ठित भाषा बन गई। इसलिए सिद्ध है कि भाषा सतत परिवर्तनशील होती है। पांचवा, भाषा का नैसर्गिक एवं अविच्छिन्न प्रवाह। कबीर ने स्पष्ट कहा है कि भाषा बहतानी। इस कथन से यह बात भली प्रकार ज्ञात होती है कि नदी के प्रवाह की तरह भाषा का प्रवाह भी अविच्छिन्न एवं नैसर्गिक होता है। भाषा का प्रवाह प्राकृतिक होता है क्योंकि भाषा का निर्माण कभी किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं होता अपितु संपूर्ण समाज में व्यवहारित शब्द ही भाषा के साथ संपत्ति बना करते हैं। जैसे नदी कभी अपना मार्ग नहीं बनाती वैसे ही भाषा कभी अपना रूप निर्माण नहीं करती अपितु उसकी प्रयोगता स्वाभाविक रूप में उसके रूपों का निर्माण किया करते हैं। जैसे अंग्रेजी का लैंटर्न शब्द जब हिंदी प्रदेश में आया जब हिंदी भाषा भाषी उसे लालटेन कहने लगे। अब न जाने किसने पहले लैंटर्न को लालटेन कहा, आज तक यह तथ्य किसी को ज्ञात नहीं है। परंतु लालटेन शब्द जब से हिंदी भाषा भाषी की जीवा पर आया है तब से विच्छिन्न रूप से चल रहा है। ऐसे ही अन्य बोलचाल के शब्दों में से गलीचा चाकू तोप दरोगा लाश मशालची खजानची आदि तुर्की भाषा के शब्द जब से हिंदी भाषा में व्यवहारित हुए हैं तब से अपना तुर्कीपन छोड़कर हिंदी की सहज संपत्ति बन गए हैं। ऐसे ही अपील अस्पताल इंच कफ कटपिस कमेटी कापी कुनैन गाटर गिलास चिक टिकट दर्जन आदि हजारों अंग्रेजी के शब्द जब से हिंदी भाषा के प्रवाह में आकर मिल गए हैं तब से अविच्छिन्न रूप में व्यवहारित हो रहे हैं। ऐसे ही आज हिंदी भाषी नहीं जानते कि अलमारी अचार कमीज कनस्तर काजू गमला गोभी चाबी तौलिया पिस्तौल पीपा बाल्टी बोतल मेज संतरा आदि शब्द पुर्तगाली भाषा के हैं। कारतूस कूपन अंग्रेजी आदि शब्द फ्रेंच भाषा के हैं और तुरुप बम यानी गाड़ी का आदि शब्द डच भाषा के हैं। किंतु ये हिंदी भाषा के प्रवाह में कुल मिलकर हिंदी भाषा के शब्द बन गए हैं और यह प्रवाह सतत गति से प्रवाहित हो रहा है। यही बात अंग्रेजी भाषा के बारे में भी है। उसका विकास निम्न जर्मन भाषा से हुआ है और उसमें जर्मन फ्रेंच ग्रीक लैटिन गॉथिक आदि भाषाओं के शब्द घुल मिलकर आज अंग्रेजी की सहज संपत्ति बन गए हैं। इस प्रकार विभिन्न शब्दों एवं प्रयोगों को अपनाती हुई भाषा सदैव एक प्राकृतिक नदी की भांति सतत गतिशील रहती है। उसकी अविच्छिन्न धारा में तनिक भी रुकावट नहीं पड़ती और वह अपने आसपास की भाषाओं के शब्दों को भी अपनी सहज संपत्ति बनाती हुई इसी तरह बहती रहती है। जिस तरह विभिन्न छोटी नदियों, नालों आदि के जल को लेकर कोई बड़ी नदी सतत प्रवाहित होती रहती है, यही कारण है कि भाषा का प्रवाह अविच्छिन्न एवं नैसर्गिक होता है। छठा, अनुकरण से सीखना। भाषा कभी स्वतः नहीं आती, अपितु वह माता पिता, संरक्षक या शिक्षक की ध्वनि का अनुकरण करने पर सीखी जाती है। प्रायः बच्चे अपने माता पिता को जिस तरह बोलते हुए सुनते हैं, उनकी ध्वनि का अनुकरण करके बोलने लग जाते हैं। जैसे माता पिता यदि पीने के पदार्थ को पानी कहते हैं तो बच्चा भी उसे पानी कहने लगता है, और यदि माता पिता उसे वाटर कहते हैं तो बच्चा भी उसे वाटर कहने लगता है। यदि माता पिता रात्रि को आकाश में सबसे अधिक चमकने वाले पदार्थ को चंदा या चंद्रमा कहते हैं तो बच्चा भी उसे चंद्रमा या चंदा कहने लगता है। यदि उसे मून कहते हैं तो बच्चा भी उसे मून कहने लगता है। यदि माँ बाप घर में दूध देने वाले पशु को गाय कहते हैं तो बच्चा भी उनके ध्वनि का अनुसरण करके उसे गाय कहने लगता है। यदि वे उसे काऊ कहते हैं तो बच्चा भी उसे काऊ कहने लगता है। ऐसे ही धीरे धीरे शब्दों से आगे बढ़कर वह माँ बाप के वाक्यों का अनुकरण करके वाक्य बोलने लगता है, और बड़ा होकर अपने समाज में प्रचलित भाषाओं की ध्वनियों का अनुकरण करके उस भाषा का उच्चारण करने लगता है। इस अनुकरण की प्रवृत्ति को ग्रामीण बोलियों में भली प्रकार देखा जा सकता है। जैसे हिंदी प्रदेश की ग्रामों में रहने वाले बच्चे अपनी अपनी बोली का यह अनुसरण करने के कारण परिनिष्ठित हिंदी ये चलता हूँ क्रिया को ब्रज के बच्चे चलतू हों कहते हैं, कन्नौजी प्रदेश के बच्चे चलत हैं कहते हैं, बांगुर प्रदेश के बच्चे चालू सूं कहते हैं, खड़ी बोली प्रदेश के बच्चे चलता हूँ जाता हूँ कहते हैं, मोदी के बच्चे चलती हऊ कहते हैं, बघेली प्रदेश के बच्चे चलत आ कहते हैं, बुंदेलखंड के बच्चे चलत हौ कहते हैं, राजस्थान के बच्चे चलहू हूँ कहते हैं, गढ़वाल प्रदेश के बच्चे चल दू कहते हैं, भोजपुर प्रदेश के बच्चे चलत है कहते हैं, और मैथिली प्रदेश के बच्चे चलें छी कहते हैं। इस प्रकार माता पिता एवं समाज के द्वारा उच्चरित बोली का अनुकरण करके प्रायः बच्चे अपने भाषा प्रदेश में अपनी बोलियाँ बोला करते हैं। इससे सिद्ध है कि भाषा सदैव अनुकरण के द्वारा ही आती है। सातवां, मानव जीवन। भाषा मानव का आविष्कार है, क्योंकि संसार के सभी मानवों में किसी न किसी भाषा का प्रचार देखा जाता है, जबकि पशु पक्षियों, जल जीवों आदि में कोई भाषा प्रचलित नहीं है। मानव ने अपने जीवन यापन के लिए अथवा जीवन के व्यवहार के लिए भाषा का निर्माण किया है, और भाषा का मानव जीवन से भी सर्वाधिक संबंध है। वैसे मदारी की भाषा को बंदर बंदरिया समझते हैं, रीच समझते हैं, बकरा बकरी भी समझते हैं, किंतु वे मदारी की तरह उच्चारण नहीं कर पाते। घरों में पले हुए तोते मैंने भी मानव की भाषा को बोलने लगते, किंतु वे भाषा के मर्म को नहीं समझते और बिना समझे उसे रट लेते हैं। यही बात पशु पक्षियों के बारे में भी है कि वे कभी कभी मानव की भाषा को उच्चारण तो कर लेते हैं परंतु उसके मर्म को नहीं जानते। जैसे संत ज्ञानेश्वर के नांदी ने गायत्री मंत्र का शुद्ध उच्चारण कर दिया था, परंतु भाषा का घनिष्ठ संबंध मानव जीवन से ही है। इसलिए प्रत्येक मानव समाज की भाषा भिन्न होती है। मानव ने अपने जीवन की आवश्यकताओं के अनुसार भाषा का आविष्कार किया है, उसकी ध्वनियों का निर्माण किया है और उसके ध्वनि चिन्हों को लिपिबद्ध करने की प्रथा चलाई है। इसलिए भाषा का संबंध मानव के अपने व्यवहार से है, अपने जीवन से है और अपने दैनंदिन क्रियाकलापों से है। वह अपने जीवन को संपूर्ण क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए भाषा बोलता है। वह अपने संपूर्ण कार्यों के संपादन के लिए भाषा का प्रयोग करता है और वह अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भाषा का उच्चारण करता है। इसीलिए उसने आरंभ से ही भाषा को सजाया है, उसे समुन्नत बनाया है, उसके अभावों को दूर किया है, उसे सभी प्रकार से संपन्न बनाया है, उसकी सर्वांगीण उन्नति की है और उनका आवश्यकता अनुसार संशोधन एवं परिवर्धन किया है। इतना ही नहीं, मानव ने अपने जीवन का सर्वस्व अर्पण करके भाषा की रचना की है और रात दिन उसके सर्वांगीण विकास के प्रयास में लगा रहता है। मानव ने भाषा के विविध ध्वनि संकेतों का अन्वेषण किया है, विविध शब्दों की खोज की है, विविध लिपि संकेतों का निर्माण किया है और विविध पदार्थों के लिए विविध शब्दों की रचना की है। साथ ही शब्द और अर्थ का संबंध भी मानव ने ही स्थापित किया है। अतः यह निर्विवाद सत्य है कि भाषा मानव जीवन से पोषित होती है। भाव संप्रेषणीयता का सर्वश्रेष्ठ साधन। भाषा के निर्माण से पूर्व मानव अपना व्यवहार कैसे करता था, कैसे अपनी इच्छा एवं भावनाओं व्यक्त करता था अथवा कैसे विचार विनिमय करता था, आज इन प्रश्नों पर ये अनुमान लगाया जाता है कि वह पशु पक्षियों की भांति केवल शारीरिक संकेतों एवं कुछ अव्यक्त एवं निरर्थक ध्वनियों का प्रयोग करता होगा। कुछ विद्वान ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि यदि मानव के पास भाषा नहीं थी, उसका विचार है कि मानव ने पशु पक्षियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिगत योग्यता लेकर जन्म लिया है, अतः उसके पास आदिकाल से ही भाषा थी। भले ही वह विकसित एवं परिमार्जित अपरिमार्जित रही हो अथवा अधिक सार्थक एवं सूक्ष्म चिंतन क्षमता से परिपूर्ण न हो, जो भी हो, यह बात सभी विद्वान मानते हैं कि मानव ने भाषा को इसलिए अधिकाधिक विकसित किया है क्योंकि उसको दैनिक जीवन में उसकी परम आवश्यकता थी। इसके बिना उसका काम नहीं चल सकता था और भाषा के बिना वह अपनी इच्छा एवं भावनाएं व्यक्त नहीं कर पाता था। यह दूसरी बात है कि उससे पर्यायवाची ध्वनि संकेतों का निर्माण प्रकृति पदार्थों की ध्वनि के अनुकरण के आधार पर किया अथवा कुछ मनोभावों को व्यक्त करने वाली सहज ध्वनियों के आधार पर शब्द बनाए अथवा कुछ शब्द विभिन्न क्रियाओं एवं व्यापारों के प्रतीक बनकर प्रयुक्त होने लगे। मानव ने भाषा के अतिरिक्त अन्य साधनों को भी अपने भावों के व्यक्ति के लिए अपनाया है। जैसे वह आँखों के संकेत से कभी किसी को बुलाता है, हाथ के संकेत से कभी किसी बात का निश्चित करता है, सिर हिलाकर कभी किसी बात की स्वीकृति देता है और कभी अस्वीकृति भी प्रदान करता है। कभी वह मुख मटका कर किसी को अपने साथ चलने का आग्रह करता है, कभी भौंहें टेढ़ी करके क्रोध व्यक्त करता है, कभी होंठों पर मुस्कुराहट लाकर प्रसन्नता व्यक्त करता है, कभी नासापुट फड़का कर अपना कोप दिखाता है, कभी मुख की लाली द्वारा लज्जा एवं हर्ष का अभिव्यक्ति करता है और कभी मुख की विपर्णता द्वारा भय एवं आशंका का भाव व्यक्त करता है। इस प्रकार भावों के अभिव्यक्ति के लिए शारीरिक चेष्टाओं एवं व्यापारों को भी काम में लाया जाता है, परंतु देखा गया है कि ये चेष्टाएँ एवं व्यापार इतने सशक्त एवं समर्थ नहीं हैं जितनी कि भाषा होती है। भाषा के द्वारा सभी प्रकार के मनोभाव इतनी सरलता एवं सुगमता के साथ व्यक्त किए जाते हैं कि उनकी क्षमता कदापि शारीरिक एवं अन्य बाह्य उपकरण नहीं कर सकते। यही कारण है कि भाषा भाव प्रेषणीयता का सर्वश्रेष्ठ साधन है। नौवां, सार्वजनिक संपत्ति। भाषा एक सार्वजनिक संपत्ति है। इसका उत्तरोत्तर विकास हुआ है और इस पर किसी एक जाति, एक धर्म, एक संप्रदाय अथवा एक परिवार का अधिकार नहीं है, अपितु एक समाज में रहने वाले विविध जाति, धर्म, संप्रदाय और परिवार वाले व्यक्तियों में समान रूप से इसका प्रचार एवं प्रसार देखा जाता है। यदि कोई व्यक्ति एक भाषा क्षेत्र को छोड़कर किसी दूसरे भाषा क्षेत्र में रहने लगता है तो एक दो पीढ़ी के उपरांत यह देखा जाता है कि उस परिवार के व्यक्ति अपने पूर्वजों की भाषा को भूल कर उसी भाषा का व्यवहार करने लगते हैं जिस भाषा के क्षेत्र में वे रह रहे हैं। इसके साथ ही वे अपने पूर्वजों की भाषा को पूर्णतया भूल जाते हैं। जैसे मंगोलिया, तुर्किस्तान, अरब अथवा फारस में आने वाले बहुत से लोग ऐसी भाषा भाषी परिवार हिंदुस्तान में आकर बस गए हैं जिनकी संतानें आज न तो मंगोलिया की भाषा जानती हैं और न तुर्किस्तान की तुर्की से अच्छी तरह परिचित है, न अरब प्रदेश की अरबी को ही जानती है और न फारस प्रदेश की फारसी को ही समझती है। वरन वे यदि बंगाल बसे हुए तो बंगला भाषा को जानते हैं, गुजरात में बसे हैं तो गुजराती खूब बोलते हैं, महाराष्ट्र में रह रहे हैं तो मराठी जानते हैं, पंजाब में बस गए तो केवल पंजाबी को ही जानते हैं और यदि उत्तर प्रदेश में बसे हैं तो हिंदी में ही अपना रात दिन विचार व्यक्त करते हैं। इस तरह भाषा प्रत्येक व्यक्ति को समाज में रहने पर सहज रूप में प्राप्त होती है और यदि वह प्रयत्न करे तो उस समाज की भाषा से भिन्न एवं भाषाओं को भी सीख सकता है। इसलिए भाषा पर किसी का पैतृक अधिकार नहीं होता और न वह किसी की पैतृक संपत्ति होती है जिसे दूसरा कभी ग्रहण न कर सके, अपितु भाषा तो प्रत्येक मानव के लिए सहज एवं स्वाभाविक रूप में प्राप्त होने वाली सार्वजनिक संपत्ति है। दसवां, जटिलता से सरलता की ओर उन्मुक्तता। भाषा के क्रमिक विकास का अनुशीलन करने पर विद्वानों ने यह तथ्य निकाला है कि मानव सदैव भाषा के जटिल प्रयोगों को सरल बनाने की ओर उन्मुख रहा है। मानव ही यह सहज प्रवृत्ति है कि वह कम से कम प्रयत्न में अधिक से अधिक बात कहना चाहता है अथवा कम से कम ध्वनि संकेतों में बड़े से बड़े शब्द को व्यक्त करना चाहता है। इसी मनोवृत्ति ने पर्यंक ग्रंथ शब्द को सरल करते करते पालती या पालथी बना दिया है, उपाध्याय शब्द को झा कर दिया है, कशपट्टिका शब्द को कसौटी कर दिया है, स्वर्णाकार शब्द को सुनार कर दिया है, पुस्तिका को पोथी बना दिया है, चतुर्विंशति को 24 बना दिया है, कुष्ठगारिका को कोठरी बना दिया है, मौक्तिकी को मोती कर दिया है, कपर्दिका को कौड़ी बना दिया है, मुदगरिका को मुगरी बना दिया है, अग्रहायण को अघहन कर दिया है, अट्टालिका को अटारी बना दिया है, परपटिका को पपड़ी बना दिया है इत्यादि। अतः यह सिद्ध है कि भाषा सदैव जटिलता से सरलता की ओर उन्मुख होती है।